ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि जरूरी होने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया।
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों से लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है। संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। विधेयक को पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कल नई दिल्ली में इस करार पर हस्ताक्षर के समय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ लगभग 8 करोड़ सदस्यों और 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ उपलब्ध करा रहा है। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले वित्त वर्ष में 25 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में लगभग 35% वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में सबसे अधिक वृद्धि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई है, जो लगभग 38% बढ़कर लगभग 21 गीगावाट हो गई है। श्री जोशी ने कहा कि पीएम कुसुम योजना में भी अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने के बाद से 1,10,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। देशभर में टोल शुल्क की दरें तत्काल प्रभाव से 4-5% तक बढ़ गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे राजमार्गों के रखरखाव और उनके विस्तार में मदद मिलेगी। कारों के लिए मासिक पास की दर 930 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये कर दी गई है। संशोधित दरें देशभर में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगी। अब विमान यात्री आयात निर्यात के लिए रत्न आभूषणों और मशीनरी के नमूने अपने व्यक्तिगत सामान में ले जा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन नमूनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुरू करने जा रहा है। निर्यात की व्यवस्था इस वर्ष 1 मई से 9 हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएंगी। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर के हवाई अड्डे शामिल हैं। आयात के लिए व्यक्तिगत सामान का उपयोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर हवाई अड्डों पर किया जा सकेगा। मशीनरी के नमूनों का आयात निर्यात बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों से हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल से श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मेनन ने कल कोलंबो में आकाशवाणी से इस यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पास भारत के विकास का लाभ लेने के पर्याप्त अवसर हैं। श्री मेनन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा श्रीलंका में निवेश और पर्यटन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। म्यांमार में पिछले सप्ताह के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2,719 हो गई है। 4,500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 441 लोग लापता हैं। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन उंग ह्वाइंग के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपदा के बाद क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को लगातार राहत सामग्री और मानवीय सहायता दे रहा है। यमन में हूतियों के कब्जे वाले इलाके में अमरीकी हमले जारी हैं। पश्चिमी प्रांत होदे इडाह में इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। हमलों में मंसूरिया जिले में एक जल परियोजना और उसके भवन को निशाना बनाया गया। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान शियाज अय्यर ने नाबाद 52 रन और प्रभ सिमरन सिंह ने 69 रन बनाए। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।